ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 5 अध्याय 1। अध्याय का नाम है महाराज प्रियव्रत का चरित्र और श्लोक संख्या 28 और 29। दो श्लोक पढ़ेंगे, 28 में तात्पर्य ना के बराबर है तो इसलिए 29 को पढ़ेंगे। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है श्लोक, आप सभी हमारे साथ में पढ़ेंगे। अन्यस्याम अपि जायायां त्रयः पुत्राः आसन् उत्तम तामसः रेवतः इति मनुमंतर अधिपतय। अन्यस्यामपि जायायां त्रयपुत्रा आसन उतं उत्तमं तामसः रेवतः इति मनमन्तराधिपतयः। अन्यस्यामपि जायायां त्रयपुत्रा आसन उत्तम तामसः तामसो रेवतः इति मनमन्तराधिपतयः। अन्यस्यामपि जायानां त्रयपुत्रा आसन उत्तम तामसो रेवतः इति मनमन्तराधिपतयः आप लोग दोहराएंगे। अन्वयस्यामपि जायायां त्रय पुत्र आसन उत्तम तामसो रेवत इति मनमंतराधिपतयः अनवय जायाय त्रय पुत्र आसन उत्तम तामसो रेवत इति मनमंतराधिपतयः माताय तन्यवस्वी जायाय त्रय पुत्र आसन उत्तम तामसो रेवत इति माताएं बोलेंगे अंश्याम अपि जायाय उत्तम तामसो रेवत इति मनमंतराधिपतय जायाय त्रय पुत्र आसन उत्तम तामसो रेवत इति मनमंत्राधिपतय शब्दार्थ अन्य श्याम अन्य अपि भी जायायाम स्त्री से त्रय तीन पुत्रा पुत्र आसन थे उत्तम तामसह रेवता उत्तम तामस तथा रेवत इति इस प्रकार मनमंत्र मनमंत्र कल्प के अधिपतय शासक महाराज प्रियव्रत के दूसरी पत्नी से तीन पुत्र उत्पन्न हुए जिनके नाम उत्तम तामस तथा रेवत थे। बाद में इन्होंने मनमंत्र कल्पों का भार संभाला। दूसरा श्लोक बोल देते हैं, हम ही बोल देते हैं क्योंकि बहुत लंबा है। एवं उपसमं अयनेषु स्वतनयेषु अतः जा जगति पति जगतीम अर्बुदानि एकादश परिवत्सराणां अव्याहत अखिलः पुरस्कार सार संव्रत दंड युगल आपीडितः मौर्वी गुण स्तनित विरमित धर्म प्रतिपक्षः बहिर्स्मत्याश्च अनुदिनं एदमान प्रमोद प्रसरणं योषिण्यः वीणा प्रमुषिता हास अवलोक रुचिर छेल आदिवि पराभूय मान विवेकः इव अनुबध्यो मान इव महामना भुवजे। अनुवाद। इस प्रकार से कवि महावीर तथा समन के परमहंस अवस्था में भली भांति प्रशिक्षित हो जाने पर महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। 11 अर्बुद का मतलब होता है इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़, अर्थात एक अर्बुद का मतलब 10 करोड़। तो 11 अर्बुद का मतलब 11 करोड़ है, एक अर्बुद का मतलब 10 करोड़। अच्छा, एक अर्बुद का मतलब 10 × 10 दस मिनट, ये तो कितना हो गया, एक हजार ऐसा है। दस इंटू दस का मतलब 100 है, 101। चलो इस पे बहस नहीं करना है, बाद में आप कैलकुलेशन करना, मालूम चलेगा कि हरी बोल हो जाए टाइम पे। तो एक अर्बुद का मतलब होता है 10 करोड़, तो इस प्रकार उन्होंने 11 करोड़ किया, तो 10 × 10 × 10 × 11 बार। जिस समय वे अपनी बलशाली भुजाओं से मनुष्य की डोरी खींचकर, धनुष की डोरी खींचकर तीर चढ़ा लेते थे, उस समय धार्मिक जीवन के नियमों को न मानने वाले उनके विपक्षी विश्व पर शासन करने के उनके अद्वितीय शौर्य से डर कर न जाने कहां भाग जाते थे। ऐसा राज्य होना चाहिए। राजा का मतलब प्रजा को जो है वात्सल्य की तरह प्रेम भी करे, पिता की तरह प्रेम भी करे, वात्सल्य दे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उसको जो है उसके आंखों के भय से प्रजा को क्या करना चाहिए, नियमों के पालन करने से भयभीत रहना चाहिए, डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो है राजा कुछ पनिशमेंट दे दे। तो इसलिए उनके राज्य में कोई ऐसा मतलब हिम्मत नहीं कर पाता था किसी भी नियमों को तोड़े। आज भी कुछ मुस्लिम कंट्रियों में, विदेशी कंट्रियों में आज भी ये नियम है कि किसी की हिम्मत नहीं उन किसी को भी नियम तोड़ने की, बहुत भयानक पनिशमेंट होता है जिसका हम सो कल्पना नहीं कर सकते और कल्पना करना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो है इसी प्रकार प्रियव्रत महाराज, हालांकि प्रिय व्रत हैं, सबके प्रिय भी हैं, उनके व्रत भी बहुत प्रिय है, ये भी बहुत प्रिय व्रत है कि शासन जो है उनका शासन बहुत स्ट्रांग, प्रेम देने के समय प्रेम देंगे, लेकिन जहाँ नियम कानून बात वाली बात आती है तो बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं, उसमें फिर कोई भी उसमें ढिलाई नहीं देते थे, ये बहुत अच्छी बात है। वे अपनी पत्नी बहर्षमती को अगाध प्यार करते थे और समय बीतने के साथ ही उनका प्रणय भी बढ़ता गया। प्रणय मतलब प्रेम, किसके प्रति, पत्नी के प्रति। लेकिन इतना भी नहीं समझ लेना चाहिए कि वो पत्नी में आसक्त थे, बिल्कुल भी आसक्त नहीं थे। बोलो हरे कृष्णा। अपनी स्त्रियोचित वेशभूषा, उठने बैठने, हंसी तथा चितवन से महारानी बरहिष्यमती उन्हें शक्ति प्रदान करती थी। इस प्रकार महात्मा होते हुए भी वे अपनी पत्नी के स्त्री उचित व्यवहार में खो गए। वे उनके साथ सामान्य पुरुष सा आचरण करते, किंतु वे वास्तव में महान आत्मा थे। तात्पर्य, इस श्लोक में धर्म प्रतिपक्ष धार्मिक सिद्धांतों के विरोधी से किसी विशेष धर्म का नहीं, वरना वर्णाश्रम धर्म का संकेत मिलता है। धर्म प्रतिपक्ष है, जो वर्णाश्रम धर्म के अगेंस्ट में हो उसको बोलते हैं प्रतिपक्ष, मतलब उसके अगेंस्ट पार्टी। तो उस समय कोई भी अगेंस्ट पार्टी नहीं थी, उनकी सब पॉजिटिव ही थे, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने एवं नागरिकों को जीवन लक्ष्य अर्थात आध्यात्म ज्ञान की ओर क्रमशः अग्रसर होने के लिए आवश्यक है कि वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन किया जाए। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वर्णाश्रम धर्म के पालन में महाराज प्रियव्रत इतने कठोर थे कि उनकी उपेक्षा करने वाले युद्ध के लिए ललकारे जाने या दंडित किए जाने की चेतावनी पर राजा से दूर भागते फिरते थे। दरअसल महाराज प्रियव्रत को अपने दृढ़ संकल्प के कारण लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके विपक्षी वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस तक नहीं कर सकते थे। कहा गया है कि जो मानव समाज वर्णाश्रम धर्म द्वारा चालित नहीं है, जैसे आजकल का, वह बिल्लियों तथा कुत्तों के पशु समाज से बढ़कर और कुछ नहीं है। अतः महाराज प्रियव्रत ने अपने असाधारण तथा अद्वितीय शौर्य से वर्णाश्रम धर्म को दृढ़ बनाए रखा। इस प्रकार का कठोर जागरूक जीवन बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपनी पत्नी से प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में ब्राह्मण तथा सन्यासियों को स्त्रियों से किसी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती, किंतु क्षत्रियों तथा गृहस्थों को अपने कर्तव्य पालन के लिए अपनी पत्नियों से प्रोत्साहन लेने की आवश्यकता रहती है। वास्तविकता तो यह है कि कोई गृहस्थ या क्षत्रिय अपनी पत्नी के सहयोग के लिए बिना अपना दायित्व अच्छी तरह से निभा ही नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि गृहस्थ को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, स्त्रियों को राज काज चलाने में प्रोत्साहित किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने क्षत्रियों को राज काज चलाने में प्रोत्साहन किए जाने के लिए कई पत्नियां रखने की छूट थी। कर्म तथा राजनीतिक कार्य के जीवन में योग्य पत्नी का साहचर्य अनिवार्य है। अतः सुचारू रूप से कर्तव्य पालन के लिए महाराज प्रियव्रत ने अपनी सुंदर पत्नी बहर्षमती का लाभ उठाया, क्योंकि वह स्त्रियोचित वेशभूषा, मुस्कान तथा अपने नारी सुलभ शारीरिक हाव भावों से अपने महान पति को प्रसन्न रखने में दक्ष थी। वह महाराज प्रियव्रत को प्रोत्साहित करती रहती, जिससे वे उचित रीति से शासन करते। इस श्लोक में इव शब्द का दो बार प्रयोग यह बताने के लिए किया है कि महाराज प्रियव्रत स्त्री के दास में आचरण करते हुए ऐसे प्रतीत होते थे जैसे कि वे मानवोचित विवेक को खो बैठे हों, किंतु वास्तव में वे अपनी आत्मा पद के प्रति भिन्न भिज्ञ थे। यद्यपि ऊपर से वे कर्मी पति का सा आचरण कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वो क्या थे, अपने भाव के प्रति विज्ञ थे। इस प्रकार महाराज प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक राज्य किया। 1 अर्बुद 10 करोड़ वर्ष के तुल्य होता है। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्यत्यते सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नम अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रश भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं भूतैरमहद्वे इमां पुराभिवो निर्माय यस्य ते यदमुंश पुरुष भुङ्क्ते गुणानसो डसो डसात्मकं सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृत शिष्ट भगवान् वचांसि मे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर महाराज प्रियव्रत का चरित्र, इसके बारे में चर्चा चल रही है। तो जिनके नाम ही प्रियव्रत है तो उनके कार्य भी तो प्रिय जैसे ही होंगे, है कि नहीं? और फिर उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे लगभग। तो हमारे कहावत बोलते हैं, ये हमने पहले भी बोला है, जैसे जाके नदी नाकुरे तैसे ताके भरिका, और जैसे जाके डई डोकरे तैसे ताके लरिका। ये सुना है कि नहीं आप लोगों ने? सुना है तो हाँ बोलो, नहीं सुना है तो ना बोलो। नहीं सुना है मतलब कुछ ऐसी मिक्स है। इसका मतलब है महाराज प्रियव्रत किसके पुत्र हैं? स्वयंभू मनु के पुत्र हैं, एक नहीं? उनके दो पुत्र थे, एक तो प्रियव्रत थे और दूसरे उत्तानपाद थे। तो उत्तानपाद के बारे में तो हम चतुर्थ स्कंद में सुने हैं, उनके भी दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था उत्तम और दूसरे का नाम ध्रुव। तो ध्रुव महाराज का जो है प्रसंग हम सुने थे, कितने महान भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान को प्रसन्न करके और जो है ध्रुव लोक को प्राप्त किया, और उसके बाद में फिर भगवान के धाम चले गए, वापस चले गए। तो अभी हम सुन रहे हैं उनके दूसरे भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। तो जो है प्रियव्रत भी आप देख सकते हैं, इनके जो कार्य इतने अद्भुत थे, इतने दिव्य थे कि सुखदेव गोस्वामी को लास्ट में ये बोलना पड़ा कि प्रियव्रत के कार्यकलापों का कोई कितना भी क्यों ना प्रयास कर ले, लेकिन उनके कार्यों का कोई भी अनुकरण नहीं कर सकता। जो कार्य उन्होंने इतिहास में कर दिए, कोई भी उन कार्यों को आप भविष्य में कोई भी उन कार्यों को नहीं कर सकता है। इतने अद्भुत कार्य थे इनके। तो आप सोच सकते हैं कि प्रियव्रत महाराज अब उनके जो है इतने महान हैं, तो फिर उनके पुत्र भी महान होंगे। जैसे जाके डई डोकरे तैसे ताके लरिका, लरिका मतलब पुत्र, जिनके जो है माता पिता इतने महान है तो उनके पुत्र भी महान होंगे कि नहीं होंगे? तो इसलिए इनके पुत्रों को भी हम महानता देख रहे हैं। पहले पहली पत्नी से जो है उनके 10 पुत्र हुए थे, और 10 पुत्रों में जो है पहले तो 7 द्वीपों के राजा बन गए थे। उन्होंने जो है सूर्य के पीछे रथ चलाया, उन्होंने देखा कि सूर्य जो है दिन के समय दिन करता है लेकिन रात्रि में तो कोई नहीं रहता, इतनी सारी लाइट फूकनी पड़ती है, इतना सारा बिल भरना पड़ता है, प्रजा को मैं बिल से ही मुक्त कर देता हूँ, लाइट से ही मुक्त कर देता हूँ, इस तरह झमले में क्यों न पड़े। तो उन्होंने क्या किया, अपना तेजस्वी सूर्य के समान रथ लेकर के और जो है सूर्य के पीछे पीछे चलने लगे। जहां सूर्य रात करता था उनके रथ से वो क्या हो जाता था, वहां दिन हो जाता था। तो इसलिए 2400 घंटे हरि बोल हो रही थी, दिन ही दिन था। कितना भी काम करो, आज के समय लागू कर दे तो लोग पागल हो जाते, क्योंकि आजकल तो दिन में काम रात में काम। तो उन्होंने जो है पूरा दिन कर दिया था 24 घंटे ब्रह्मा के भी जो है कार्यों को, सृष्टि को भी बदल दिया था, भगवान की सृष्टि भी बदल गई थी, ऐसे थे, ठीक है ना। और उनके रथ से जब चला रथ सूर्य के पीछे पीछे, तो उनके पहिए से खुद करके जब तेजी से चला तो इतना गहरे गड्ढे हो गए थे, उनके साथ समुद्र बन गए थे। सोचो आप बना सक, कोई है ऐसा जो बना सकता है समुद्र, एक समुद्र बना सकता है? नहीं बना सकता। एक डैम बनाने के लिए जो है देशों की हालत खराब हो जाती है, इन्होंने 7 समुद्र बना दिए, पानी अथाह भर दिया उसमें, तो 7ों को जो है 7 द्वीपों का, और एक एक में अलग अलग पानी भरा, किसी में दूध खारा पानी था तो किसी में मीठा पानी था, किसी में दूध था तो किसी में छाछ था, किसी में शहद था और किसी में घी था, घी था, सोचो घी था। आज घी जो है वो नहीं, नाम सुनते हैं घी लेकिन वास्तव में वो घी है कि नहीं कोई भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन समुद्र में घी भरा पड़ा है कि नहीं, अद्भुत कार्य है कि नहीं, सोचने वाली बात है। कोई भर सकता है ऐसे घी? घी का समुद्र भर दिया, पियो कितना घी पियोगे। तो इन कार्यों से हम सोच सकते हैं कि उनके कितने अद्भुत कार्य थे। फिर उनके पुत्र 7 समुद्र बने, तो 7 द्वीप बना दिए, उनकी बाउंड्री वाल कर दिए सबके, पूरे संसार के इतने मतलब मानना पड़ेगा। फिर उन द्वीपों के फिर 7ों पुत्रों को दे दिया, उनके नाम दे दिया, अपने अपने पुत्रों के अनुसार नाम दे दिया, तुम यहाँ शासन करो, तुम कोई तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा, क्यों ऑलरेडी बाउंड्री वाल बहुत बड़ी बड़ी है, पहाड़ों की बाउंड्री कर दी, कहीं जो है समुद्रों की बाउंड्री कर दी, जिसको लांग करके जाना इतना आसान नहीं है, इतनी बाउंड्री वाल कर दी। बोलो हरे कृष्णा। तो 7 वो भेज दिए उधर, 3 बचे, 3 ने कहा हम तो भगवान का भजन करेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम सन्यासी बन जाओ। तो 3 सन्यासी बन गए। अच्छा है कि नहीं अच्छा है? देखो 3 सन्यासी बना दिए उन्होंने। वो चाहते तो 10ों पुत्रों को जो है राज दे सकते थे, लेकिन उन्होंने वो जानते थे, क्योंकि वो भक्त थे, प्रियव्रत तो भक्त थे, ऑलरेडी वो खुद ही सन्यासी बनना चाहते थे, तो अपने पुत्रों को भला उससे अच्छे कार्य से क्यों जो है रोकेंगे। उन्होंने तो और प्रोत्साहन कर दिया कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सन्यासी बन जाओ। तो 3 सन्यासी बन गए उनके पुत्र जो है कबीर, महावीर और समन, ये जो है ब्रह्मचारी बन के घर से निकल गए। इन्होंने शादी विवाह किया नहीं और राजपाट के चक्कर में पड़े नहीं। इसके बाद में उनकी दूसरी पत्नी थी बहस्मती, उनसे जो है उनसे फिर और पुत्र हुए, जो 3 पुत्र और उनसे हुए, प्रियव्रत की दूसरी पत्नी, पहली से 10 हुए थे जो बहस्मती थे, दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रेवत। ये क्या बन गए? ये जो है क्या नाम है, उन्होंने जो है इनको मनु बना दिया, मनु, सबको मनु बना दिया, तामस मनमंतर, रेवत मनमंतर, महावीर, ये तामस, रेवत और उत्तम, ये 3 मनु बना दिए उनको। जैसे स्वयं मनु थे ऐसे 3 ये मनु बन गए। और इनका शासन काल था एक एक का, एक मनु का शासन काल रहता है 71 दिव्य चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि, ये 4 का 1 ऐसे 71 बार बदल जाएंगे, तब जो है एक मनु का शासन काल खत्म होता है। तो 3ों को इतना मतलब मनु महाराज बना दिए, 3 का 1 इतना बड़ा बड़ा वो काल दे दिया उनका, इतना काल रहता। तो ये 3 जो है वो बने। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु बदलते हैं? 14 मनु बदल जाते हैं। तो इनका ये इनको वो बना दिए। तो यहां प्रभुपाद जी जो है इस श्लोक में विशेष करके एक राजा के, प्रियव्रत के जो है कार्यों के बारे में अवलोकन कर रहे हैं। एक राजा को कैसा होना चाहिए, उनको ये शिक्षा लेना चाहिए ऐसे राजाओं से, प्रियव्रत जैसे महाराजाओं से उनको शिक्षा लेना चाहिए, क्योंकि उनके राज्य कार्य में कोई भी ऐसा शासक नहीं था प्रियव्रत महाराज, जैसे आज भी हम देखते हैं कि भारत जो है एक वो है, इसके जो है उसमें छोटे छोटे अन्य राज्य भी वो रहते हैं, तो इनके राज्य में और भी राजा लोग थे जो छोटे छोटे जो है राज्यों पर राज करते थे, लेकिन सबके एक छत्र सम्राट कौन थे, प्रियव्रत महाराज थे। तो प्रियव्रत महाराज के जो है पूरे शासन काल में पूरे जितने भी राज्य थे उनके अधीनस्थ जो राजा थे वो सभी में वर्णाश्रम धर्म की पूरी तरह से क्या किया जाता, पालन किया जाता था। वास्तव में देखा जाए तो एक राजा की नियुक्ति भगवान के द्वारा होती है, सर्वदेवमयो भग, जैसे राजा भी सर्वदेवमय होता है, राजा के अंदर सारे देवताओं का वास रहता है, तो राजा की नियुक्ति वास्तव में किसके द्वारा होती है, भगवान के द्वारा होती है। इसलिए जो राजा होता है प्रत्येक लोक में ऐसा राजा होता है जिसका काम होता है उस लोक की रक्षा करना। रक्षा दो प्रकार से होती है, एक तो उनकी भौतिक सुविधाएं प्रदान करना सारी, और दूसरी जो है रक्षा होती है उनकी आध्यात्म उन्नति डेवलप करके, उनकी आध्यात्म उन्नति बढ़ा करके ये दूसरी जो है उनकी रक्षा होती है। तो ये जो कार्य है चूंकि भगवान के द्वारा राजा को नियुक्त किया जा रहा है, इसलिए उसका दायित्व तो बनता है कि जहां जहां भी राजा है या राष्ट्रपति है, अभी मान लीजिए राजा है तो कई जगह राजाओं का राज खत्म है, तो प्रजातंत्र राज है तो वहां राष्ट्रपति होता है या प्रधानमंत्री होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, अन्य देशों में कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति का एक कर्तव्य बनता है कि पहला तो उनको जो है पूरी उनकी सुविधाएं उपलब्ध कराए, खाने पीने या व्यवसाय की जो भी रहन सहन की जो भौतिक सुविधाएं हैं, एक संसार में जीने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सारी की सारी जो है राजा का कर्तव्य बनता है, एन केन प्रकारेण उनको ये जो है प्रोवाइड करे या उनको जो है प्रदान करे। और दूसरी उनका दायित्व बनता है कि उनके उत्थान के लिए, परम उत्थान के लिए भी व्यवस्था करे या नियम लागू करे, जिससे उनका जो है इन भविष्य में वो क्या करे, अपना सभी कल्याण करे। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं इसके पीछे जो है, हम स्कंद 4 में लास्ट में हम किसका प्रवचन सुन रहे थे, नारद जी जो है किसके बारे, प्रथु महाराज के बारे में बताए थे, जो प्रथु महाराज से आप सभी जो है उनके बारे में सुने कि प्रथु महाराज का जो शासन काल था, उनको जब शासक बनाया था तो उसी समय जो है जैसे उनका अभिषेक जो है करके और उनको पूरा जो है राज तिलक करके जैसे ही पंडित लोग उठे तुरंत जो है प्रजा हाहाकार करने लग गए, भूखे हैं राजन हमारी रक्षा करो, भूख से तड़प रहे हैं, कुछ व्यवस्था करो, अरे भाई क्या खाना नहीं मिला है क्या, अरे खाना नहीं मिला एक दिन से नहीं, दो दिन से नहीं, कई कई दिन हो रहे हैं खाना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। तब राजा ने सोचा भाई इसका कारण क्या हो सकता है। आजकल क्या होते हैं देखो, एक वास्तव में ये सारी चीजें हमें बहुत डीपली सोचना चाहिए, ठीक है ना। आजकल जो समस्या होती है उसका भी समाधान हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, लेकिन समस्या का समाधान ऊपर से किया जा रहा है। समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है उस तक उनका बुद्धि नहीं पहुंच पा रहा है, समस्या का ऊपरी समाधान किया जा रहा है, जिसका परिणाम होता है कि वो फिर से क्या होती है, फिर से वो पैदा हो जाती है। लेकिन प्रथु महाराज ने कोई ऊपर के लेवल से उन्होंने वो नहीं किया, इसका जड़ को खुद देखा कि प्रॉब्लम कहां से उत्पन्न, कहां से है समस्या। तो उन्होंने देखा कि समस्या कहां से उत्पन्न हो रही है, तो पृथ्वी से समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि पृथ्वी अन्न नहीं दे रही है, हालांकि उसको जोता भी जा रहा है, बोया भी जा रहा है, खाद भी दिया जा रहा है, पानी भी दिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन हरी बोल पृथ्वी ने टाई टाई कर दी, बोलो जाओ। तब जो है उन्होंने जो है किसी पे भी और कुछ मतलब वो आज मतलब दोषारोपण नहीं किया, उन्होंने सीधा किसको पकड़ा, पृथ्वी देवी को पकड़ लिया, बोला तेरे कारण ये समस्या हो रही है। और उन्होंने जो है बाद में पृथ्वी को ये मनाने के लिए राजी कर दिया कि हाँ मैंने गलती किया है, लेकिन वास्तव में मैंने गलती कोई जानबूझ करके नहीं किया, क्योंकि उस समय अधार्मिक राजा थे, खूब खा पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तो इसलिए उनको पनिश करने के लिए सारे काम किए। तो प्रथु महाराज भी समझे, अब ठीक है, अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम ये करो, तुम सारी वस्तु फिर से देना शुरू करो। तो पृथ्वी जो है फिर गाय का रूप बन गई एकदम, और उन्होंने कहा तुम जो चाहिए प्रथु महाराज से तुम निकाल लो। तो उन्होंने जो है फिर सारी आइटम जितनी भी चाहिए संसार में जीवित रहने के लिए जिसको भी, वो सारी की सारी पृथ्वी ने क्या किया, पूरा जो है अपना संकल्प मात्र से फिर राजा को दिए। तो उन्होंने ये सुविधा भी प्रदान की, लेकिन साथ साथ में इतने से ही उनका काम नहीं बना था। अंत में उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने प्रजा को जो है उपदेश देना प्रारंभ किया, खाओ पियो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना भी ध्यान रखो कि साधना भजन को मत भूलो या अपने लक्ष्य को मत भूलो। जो हमारा लक्ष्य है, हम केवल खाने पीने के लिए नहीं आए, इसलिए ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं कि हे मेरे पुत्रों, जो मनुष्य शरीर मिला है वो खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला, ये किसके लिए मिला है, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्व, अपनी सत्ता को अपने सत्व को क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। तो इसी प्रकार हमारा प्रियव्रत भी यहां पर जो है बता रहे हैं कि अहम दंड धरो राजा प्रजानाम एव योजितः रक्षिता व्रत्यता स्वेषु सेतेषु रक्षिता व्रत्यत स्वेषु सेतेषु स्थापिता पृथक। अहम दंड धरो राजा प्रजानाम इह योजितः, मेरे को राजा घोषित किया गया है प्रजा के लिए, प्रजा की देखभाल करने के लिए मेरे को राजा घोषित किया गया है, लेकिन रक्षिता वृत्तिता और स्वेशेषु सेतेषु, तो रक्षिता मेरे को क्या करना है, पहले उनका रक्षण करना है। कैसे रक्षण करना है, तो खाने पीने का भी रक्षण करना है, दूसरा आक्रमणों से भी रक्षण करना है, लेकिन तीसरा किससे रक्षण करना है, धार्मिकता से भी रक्षण करना है कि ये लोग धार्मिक अधार्मिक अधार्मिक पथ पर तो अग्रसर नहीं हो रहे हैं, ये धार्मिक पर चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये भी जो है प्रजा को समय समय पर देखते रहना चाहिए। जिसका उदाहरण हम देख रहे हैं कि महाराज प्रथु जो है वो समय समय पर जो है देखते रहते थे, इसलिए उन्होंने उपदेश दे रहे हैं कि मेरे को नियुक्त किया गया है दंड देने के लिए, जो दोषी व्यक्ति हैं, जो अपराधी व्यक्ति हैं, उनको दंड देना, लेकिन साथ साथ में प्रजा का रक्षा करना भी ये मेरा दायित्व दिया गया है। किस किस से रक्षा करना है, तो जो है शत्रुओं से रक्षा करना है, और दूसरा जो है उनकी जो सुविधाओं की असुविधा है, जो जरूरत है वो उपलब्ध नहीं हो रही है तो उनसे भी उनको देना है, लेकिन साथ साथ में ये भी उन्होंने बताया कि मेरे को तुम्हारे आध्यात्म उन्नति को भी देखना है, आप लोग आध्यात्म उन्नति नहीं कर रहे हैं तो ये भी मेरे लिए जो है हानिकारक होगा। उन्होंने कहा यदि राजा केवल कर लेता है, टैक्स लगाता रहता है, और उस टैक्स को जो है प्रॉपर ढंग से प्रजा के लिए नहीं नियुक्त करता, उसको जो है नहीं लगाता है, केवल अपने ऐस आराम में ही जो है उसको लगाता रहता है, तो ऐसा प्रजा कहाँ जाता है, नरक में जाता है, क्योंकि वो प्रजा के पाप का भागीदार हो जाता है। इसलिए राजा का कर्तव्य बनता है कि उनके हित के लिए बराबर जो है कार्य करता रहे, जिसमें कई सारे शास्त्रों में उदाहरण दिए गए हैं। हम देख सकते हैं, एक उदाहरण आप लोगों को हम बताते हैं, महाराज रुकमांगद का, इच्छ्वांक वंशु महाराज रुकमांगद हुए, जिनका शासनकाल पूरी पृथ्वी पर था, और वो कहां के राजा थे, अयोध्या के राजा थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो एक बार उन्होंने जो है जो स्वर्ग की अप्सरा थी, एक बार क्या हुआ, एकादशी के दिन जब वो मृत्यु लोक में आती थी उनका एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें वो क्या करती थी, भ्रमण करती थी, रहती थी। आकाश के या स्वर्ग की जो अप्सराएं थी रात्रि के समय अलक्ष रूप से आकर के उसके बागान में भ्रमण करती थी। अर्थात बागान में इतने अच्छे फल और फूल लगे हुए थे, उनकी खुशबू जो है स्वर्ग लोक तक जाया करती थी। तो स्वर्ग लोक में भी फल फूलदार या खुशबूदार तो है, फल भी हैं फूल भी हैं, लेकिन उनकी खुशबू कभी भी इधर नहीं आई। लेकिन यहाँ के फल फूलों की खुशबू कहाँ जाया करती थी, स्वर्ग में जाया करती थी। इसलिए स्वर्ग की जो अप्सरा हैं वो रात्रि के समय बागान में घूमा करती थी, सुबह तोड़ फल फूल तोड़ के ले जाती थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने देखा कि भाई क्या बात है, फल फूल नहीं लग रहे हैं। माली को पूछा, भाई क्या बात होती है, फल फूल क्यों नहीं है? तो उन्होंने बताया कि महाराज मैं तो बड़ा सतर्कता से रखवाली कर रहा हूँ, लेकिन आश्चर्य से बात का है कि रात्रि के शाम के समय तो मैं देखता हूँ फल फूल हैं लगे हुए हैं, लेकिन जब सुबह उठ करके देखता हूँ तो कहाँ गायब हो जाते, अदृश्य हो जाते। बड़ा आश्चर्य वाली बात है, मैं भी नहीं देख पा रहा। और एक दिन चोर पकड़ा गया। हुआ ये था, एकादशी का समय था और जो अप्सरा जो जब घूम रही थी तो किसी कारण ऐसा बताया है उसमें तो जो है भक्तमाल में के उसका पैर बैंगन के पेड़ पर पड़ा जिसका कांटा चुभा, और कांटा चुभने से उसके सारे पाप खत्म हो गए। अब सुबह वो जाने के लिए हुई तो जा नहीं सके, सारे पाप खत्म हो गए, सॉरी पुण्य खत्म हो गए। तो पुण्यों के बल से स्वर्ग जा सकते हैं, पापों के बल से तो नहीं जा सकते, मृत्यु लोक में तो रह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वर्ग में पापों के बल से नहीं रह सकते, इसलिए उनको नीचे अब यहां से उड़ नहीं सके। तो सुबह जब देखा, माली ने देखा कि स्त्री घूम रही है, तुरंत उन्होंने रुक्मांगद महाराज को जो है वो सूचना दी। महाराज भी बड़े आश्चर्य थे, वो आए देखा तो भाई ये तो स्वर्ग की अप्सरा है। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उन्होंने सारी बात बताई और उन्होंने ये भी कहा कि महाराज मेरा जो है बैंगन के वृक्ष पर पैर पड़ने से, उनका कांटा चुभने से मेरे सारे पुण्य खत्म हो गए हैं, इसलिए आप प्लीज हमारी आप रक्षा करो या सहायता करो कि आप हमें जो है फिर से कुछ ऐसे पुण्यों का संकल्प करा दो जिससे क्या हो कि हम फिर से स्वर्ग लोक जा सके। तो राजा ने कहा भाई ऐसे पुण्य मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, कोई उपाय बताओ जिसके द्वारा हम ऐसा कार्य करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज एकादशी थी, एकादशी के दिन हुआ, यदि किसी ने एकादशी का व्रत किया है, यदि एकादशी का व्रत किया है वो भी अपने पुण्यों को मेरे को अर्पित करता है तो उसके बल से भी मैं जा सकती हूँ। तो महाराज रुक्मांगद का जो शासन काल था वो सतयुग की बात थी, तो वहां सतयुग में तो कोई एकादशी जानता नहीं था, ये छोटे मोटे कार्यों को जानता नहीं था। सतयुग में लोग क्या करते थे, सतयुग का धर्म क्या था, तपस्याएं थी, वो तो तपस्या में बस हजारों बरस बैठे रहते। एकादशी द्वादशी ये क्या है, एक दिन फास्टिंग कर लिए बस हो गया, ये कौन विश्वास करता था उसमें। आजकल तो एकादशी तपस्या से बढ़कर के हो रही है, एकादशी गिनते रहते हैं और जैसे जैसे नदी के आती है तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, कल आ रही है एकादशी, आ रही है एकादशी, आ रही है। और कुछ करना नहीं, कोई व्रत नहीं रखना है उस दिन, ये फीस्ट होती है कि अन्य 15 दिन भी ऐसी फीस्ट नहीं होती, एकादशी के दिन प्रसाद, फिर भी जो है टेम्परेचर बढ़ता रहता है। बताइए आजकल क्या तपस्याएं रह गई है, कह सकते खा पी करके भी तपस्या नहीं हो रही है। तो इसलिए महाराज ने मना कर दिया कि हमारे राज्य में तो कोई भी एकादशी नहीं करता। तो उन्होंने कहा महाराज कोई बात नहीं है, यदि किसी कारण से कोई नहीं खाया पिया हो वो भी यदि एकादशी के व्रत का यदि हम समर्पण करता है तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा, हम उसके बल से चले जाएंगे। बोला हाँ ये मैं दे सकता हूँ, कोई बीमार हो या किसी ने मारा पीटा हो या किसी और कोई केस बन गया हो तो ऐसा मैं दे सकता हूँ, या कोई चोर हो रात भर घूमाओ कुछ न मिलाओ खाने पीने के लिए तो हो सकता है कि वो भी। तो हुआ क्या, राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया अपने राज्य के अंदर कि मेरे राज्य के अंदर कल किसी ने खाना पीना नहीं खाया हो वो आए हमारे राज्य के अंदर और हम उसको जो है मुंह मांगा दान देंगे, जो भी चाहिए हम देंगे, लेकिन हमारे पास में आए। तो एक दासी आई, एक किसी वैश्य के यहाँ वो काम करती थी, लेकिन किसी कारण से हो सकता है उसने जो है ठीक से तोला ना हो या ज़्यादा दे दिया हो या कुछ गलत काम मतलब चोरी कर लिया हो पैसा, किसी कारण से उसको बहुत प्रताड़ना दी गई और उसको जो है नौकरी से निकाल दिया, बेचारी को नौकरी से निकाल दिया तो बहुत दुखी हो गई, दुखी हो गई तो कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला। इसका परिणाम था कि सुबह दिन में भी कुछ नहीं खाया और रात्रि के समय भी कुछ नहीं खाया उसने। ओ बेचारी रोती रोती हुई, महाराज मैं ही एक ऐसी हतभागिनी हूँ कि कल मैंने कुछ नहीं खाया पिया है। बोला तू अब हतभागिनी नहीं अब तो तू जो है बहुत भाग्यशाली बनने वाली है। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने कल का जो भी तुमसे अनजाने में जो पुण्य हुआ है उसका तुम संकल्प कर दो। तो उसको मालवी नहीं कि कुछ पुण्य बना है, लेकिन उससे संकल्प करा लिया, क्योंकि उस दिन क्या था, एकादशी थी, तो एकादशी का जो है अनजानते में हुआ तो उसी का संकल्प करा दिया। और जैसे ही उसने संकल्प किया वो अप्सरा थी, फट से फिर से अपने पुण्यों को प्राप्त करके और सीधी स्वर्ग लोक में, हरि बोल प्रभु जी फिर मिलेंगे, और सीधी स्वर्ग लोक में चली गई। राजा ने देखा अरे इतना बड़ा भी कोई पुण्य दे सकता है, जो घर बैठे बैठे भी जो है पुण्यों की गठरी बंद करके आ गई, कोई थोड़ा सा व्रत कर लिया और उसमें इतना लाभ जो स्वयं मैंने आंखों से देखा है। तब तो राजा ने पूरे राज्य में इमेडिएटली वो नियम पालित कर दिया। राजा को देखना चाहिए क्या समाज के लिए या प्रजा के लिए हितकर है, और उसको अवश्य करना चाहिए। यही तो राजा है, राजा का मतलब यही है उसका पूरा गाइड करे, संसार का भौतिक समाज का मार्गदर्शन करे, साथ साथ में आध्यात्मिक गाइडेंस भी उसको देता है। उन्होंने देखा इससे उत्तम साधन क्या हो सकता है, तुरंत पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया, आज से मेरे राज्य में एकादशी के दिन 8 वर्ष से लेकर के और 80 वर्ष तक जितने भी बीच के हैं, चाहे पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र कोई है, सबके लिए व्रत पालन करना कंपल्सरी है। और यदि किसी ने हिम्मत की इसको तोड़ने के लिए तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब सोच लो, अब कोई तोड़ेगा उसको, वही तोड़ेगा जिसको यमराज के पास में बहुत जल्दी जाने की पड़ी है, वही तोड़ेगा, और तो कोई नहीं तोड़ सकता। ये परिणाम हुआ उसका, कुछ ही दिनों में यमराज की जो यमपुरी भरी पड़ी थी, अब ये हो गया कि यमराज की पूरी यमपुरी खाली हो गई। बोलो हरे कृष्ण। यमराज ने देखा भाई पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए, पनिशमेंट मेरे को मिल गया। अब तो यमराज जी देखा कि भाई यमलोक का तो राजा बनाया, लेकिन यमलोक में प्रजा ही नहीं है, किस पे राज्य करो। जो भी थे कुछ थोड़े बहुत, क्योंकि सत्ययुग में तो कोई ज्यादा नहीं जाते थे यमपुरी, थोड़े बहुत थे वो सब अपने अपने चले गए घर को। हरि बोला, तो ये पूरे सब बेड सब खाली पड़े, सब डिपार्टमेंट खाली पड़े। यमराज जी ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा ऐसी ऐसी बात है भाई, अब आपने तो पोजिशन पोस्ट दिए कि जाओ तुम यमलोक में जाओ, वहां का राज्य करो, और यमलोक में तो कोई प्रजा ही नहीं, किस पे राज्य करो। ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता नहीं, भजन तो करो ना। अरे नहीं, अच्छी बात है, अपना क्यों टेंशन ले रहे, भजन करो, इससे क्या अच्छा हो सकता है भाई। किसी पे काम धंधा ना हो, घर में मान लीजिए शादी भी ना हो, कोई काम धंधा ना हो, ये तो भगवान की असीम कृपा, मैं तो समझता हूँ कि भाई इससे बढ़कर के और क्या असीम कृपा हो सकती है। काम धंधा भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, भी घर वाले भी झगड़ा कर रहे हैं तब तो और ही उनके ऊपर महान कृपा है, तब तो अपना बैग उठाओ चलो भैया हरि बोल करके निकल जाओ, ये तो सस्ते में पट रहा है भाई। सोचने वाली बात है, वास्तव में इससे बढ़ करके और कृपा क्या हो सकती है जो आसानी से काम बनना है, नहीं तो घर छोड़ने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन ये तो इजली छूट रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा है भाई तुम्हें जो है ये तो भगवान ने आपको जो है वास्तव में कृपा की है, इनडायरेक्ट रूप से ये तुम्हें फ्री कर दिया है, अब भजन करो, अपना माला मैं दे देता हूँ, मेरी माला ले लो, जाओ तुम भजन करो। अब वो रोने लगे, नहीं मैं तो जो है राज करूंगा, राज करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ दिन तुम रुको, बाद में हम सोचते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम था तिलोत्तमा। तिल उत्तमा मतलब उसका एक एक रोम इतना उत्तम कोटि का था, यानी तिलोत्तमा मतलब तिल रखने लायक भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर लगाई जा सके, उसका एक अंग बहुत उत्तम था। लेकिन प्रियव्रत महाराज जो है, सॉरी क्या नाम है, रुकमांगद महाराज, उनसे शादी की। उन्होंने कुछ कंडीशन रख दी। बोला ठीक है, कंडीशन देखेंगे, कोई बात नहीं है। क्या कंडीशन है? जैसे उन्होंने रखी थी, क्या नाम है आपकी, केकई ने रखी थी महाराज दशरथ के सामने, ऐसे इन्होंने रख दी कि हम तुम शादी तो करेंगे, हमारी कंडीशन रहेगी। बोला ठीक है, कंडीशन रहेगी, क्या है वो बाद में बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ दिन रहे तो एकादशी आई। तो इधर तो महाराज का नित्य का प्रोग्राम था कि जैसे एकादशी आती, पहले ही एकादशी से एक दिन पहले क्या पिट जाता था, ढिडोरा पिट जाता था पूरे राज्य में, सावधान खबरदार कल एकादशी है, सभी को पालन करना। तो उन्होंने कहा महाराज किसका अनाउंसमेंट हो रहा है? बोला कल एकादशी है, उसका हो रहा है। बोला एकादशी है ये क्या होती है? बोला ऐसे एक व्रत होता है, उसको फिर क्या करना है, हम सभी को पालन करना होता है। उन्होंने बोला महाराज ये सब गलत बात है, हालांकि ओ जो है वो तिलोत्तमाते इतने आसक्त थे, जैसे यहां भी हम देख रहे हैं महाराज प्रियव्रत अपनी पत्नी बहर्षमती से इतने आकर्षित थे कि उनकी तिरछी चितवन है, उनका जो है हंसना बोलना, एक जैसे एक कोई विषयासक्त व्यक्ति या स्त्री आसक्त व्यक्ति जैसे अपनी स्त्री में आसक्त रहता है, उसी प्रकार उनके साथ आचरण कर रहे थे, ऐसे लग रहा था ये तो बहुत आसक्त हैं। लेकिन महाराज रुकमांगद चूंकि भगवान के भक्त थे, शुरू से ही उनकी मति भगवान में लगी थी, तो बाहर से ऐसे प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनको तिलोत्तमा को लगा के तो पूरे मेरे जाल में हैं, इसलिए उन्होंने रुकवा दिया। बोला रोको 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 रोको, ये सब ढिंडोरा बेडोरा बंद करो ऐसा झमेला। उन्होंने कहा नहीं ये तो मैं बंद नहीं कर सकता। बोला नहीं नहीं अब बंद करना होगा आपको। बोला नहीं, इसके बदले कुछ दूसरा वरदान ले लो। बोला ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो पुत्र है, क्या नाम है उसका, नाम था पुत्र का, नाम था रुकमांगद, और उसका नाम था उसका भी कुछ नाम था रुकमांगद का, और उस पुत्र का नाम था धर्मांगद। पुत्र था, नवजात शिशु था, लगभग 7-8 साल का बच्चा। उन्होंने कहा ठीक है, उसकी गर्दन काट करके आप मेरे को दे दो। अब राजा बेचारा बड़ा सोच में, वो कैसे हो सकता है अपने पुत्र का। बोला दो में से एक करना पड़ेगा। अंत में ये फाइनल हुआ, पुत्र ने कहा पिताजी ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपनी माता को किसी प्रकार संतुष्ट करूं, आप मेरा बिल्कुल बलि कर दो, ये मेरा भी जो है अहो भाग्य होगा। पिता ने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन बहुत जिद करने पर उसने तलवार उठाई, और जैसे ही तलवार उठाई, जैसे ही उसको मारने के लिए जैसे ही प्रहार किया, उसी समय तीनों देव आकर के वहां प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। रुको 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 रुको, तुरंत उन्होंने रुकमांगद को हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके तुरंत कहा चलो, भगवान ने कहा चलो तुम क्या करो मेरे धाम में चलो। बोला प्रभु मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाओगे? मेरी सारी प्रजा जाएगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो जाऊंगा। तो सारी की सारी प्रजा भगवान के धाम चली गई। बोलो भगवान भक्तवत्सल भगवान की। तो ये राजा का एक कर्तव्य बनता है, ये राजा का कर्तव्य। तो प्रियव्रत महाराज भी ऐसे ही महाराज थे, वो अपनी प्रजा के प्रति सतर्क थे। उन्होंने वर्णाश्रम पद्धति को लागू किया, और इस वर्णाश्रम के द्वारा उन्होंने जो है जो ब्राह्मण है जो बुद्धिशाली है अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों को शिक्षा देंगे भगवत संबंधी, और जो योद्धा वर्ग है वो देश की रक्षा करेगा, और जो क्या नाम है व्यापारी वर्ग है वो उनका भरण पोषण का व्यवस्था करेगा, और जो व्यवसायी वर्ग है सॉरी क्या नाम है जो श्रमिक वर्ग है वो उनकी सहायता करेगा। इस प्रकार सबको अलग अलग ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को, वानप्रस्थों को, संन्यास को, सब में अलग अलग उनके बांट दिए, और सबका काम था भगवान की सेवा करना, संशुद्धि हरितोषणम, भगवान को जो है तोषित करना। तो ये जो है एक राजा का ऐसा कर्तव्य बनता है। तो प्रियव्रत महाराज इसमें खरे उतरे थे, और समाप्त तो हो ही कर ही देते हैं। दूसरी जो है स्त्रियों के बारे में चर्चा हुई थी, तो क्षत्रिय और विशेष करके गृहस्थों के लिए स्त्री एक प्रकार से देखा जाए तो पहले हम सुन चुके हैं, और उसमें प्रियव्रत महाराज को जब गृहस्थ नहीं बनने थे, उन्होंने कहा कि ये गृहस्थ जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो शत्रु के शत्रुओं को जीतने के लिए किसका काम करता है, ये किले का काम करता है। जैसे किले के अंदर शत्रु उनका दुश्मन जो है कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है, कोई किले के अंदर हो तो बाहर दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही जो स्त्री रूपी किले के अंदर रहता है तो उसके एक एक शत्रु, बाहर वालों के एक शत्रु है, हमारे पास में कितने शत्रु हैं, छह शत्रु है इसमें दिया गया है। क्या है, यह सपतनात ने जिगी समाणो ग्रहे सुनिर्विश्यते तपूर्वम अत्येति दुर्गा श्रत ऊर्जितारी क्षीणे सुकामं विचरेत विपश्य। ग्रस्ताश्रम में रह करके जो मनुष्य अपने मन तथा पांचों इंद्रियों को विधि पूर्वक जीत लेता है वह उस राजा के समान है जो अपने किले अर्थात दुर्ग में रह करके अपने बलशाली शत्रुओं को भी पराजित कर सकता है। तो स्त्रियों का वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य के जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा उसका योगदान रहता है, और जो है हजारों की संख्या में हमारे देश में ऐसी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने क्षत्रिय पतियों को या गृहस्थों को अपने पतियों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, और जिसका हम सुने एक सत्यवान सावित्री करके आप सुने होंगे, उन्होंने उनके पति वैश्या व्रति करने वाले थे, कोड़ी थे, लेकिन उनको भगवत धाम पहुंचा दिया उनकी कृपा से। ऐसे भी हुए हैं जो अपने पति के साथ में युद्ध में उन्होंने मतलब सहायता किया, उत्साह किया है। जब चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में जब आक्रमण हुआ था तो देखा कि जो है महाराज जो है क्या नाम है पृथ्वीराज चौहान वो हार रहे हैं किसी कारण से, और जो है मुगलों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है महल की तरफ, तो उन्होंने क्या किए, तो उन्होंने जो है सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया, और सभी स्त्रियों को इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया और जौहर कर लिया अर्थात अपने शरीर में आग लगा दी, लेकिन उनको अपने शरीरों को टच नहीं करने दिया। तो कभी कभी देखा जाता है कि स्त्रियां जैसे राजा कहीं युद्ध करके आया है, कहीं मतलब समस्याओं से जूझ करके आता है, तो स्त्रियां अपने वचनों से अपने हाव भाव से अपनी सेवाओं से क्या करके रखती हैं, उसकी जो जिसको बोलते हैं जो थकान है उसको तुरंत वो मिटा देती है, फट से नहीं मिटा देती, उनके पास एक जादू है। तो इससे क्या होता है कि फिर वो फिर अपनी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो स्त्रियों का जो है उनको आगे बढ़ाने के लिए, पतियों को आगे बढ़ाने के लिए भगवत कार्य में और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान रहा है। तो इसलिए हमें जो है स्त्रियों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनका गृहस्थों के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसका हम जो है प्रियव्रत महाराज के उससे देख रहे हैं कि वो प्रति अपनी पत्नी के प्रति कितने आ सकते, और पत्नी भी उनकी बहुत सहायता करती थी। तो पत्नियों को चाहिए सहायता करें, और पतियों को चाहिए उनकी जो है हर सुविधा को पूरा करें, तब जो है दोनों काम ठीक ठाक चलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।